ओम शांति। आज बाबा के साथ हम जो संबंध का अनुभव करेंगे, बाबा हमारा किंग मेकर है। किंग मेकर वो राजाओं का निर्माण करने के लिए आया हुआ है, इसलिए हमें भी वो राजा बनाने की शिक्षा दे रहा है। तो ये हमारा परम सौभाग्य है कि हमको एक ऐसी पाठशाला में एडमिशन मिली है जहां राजाओं का निर्माण होता है। प्रजा का नहीं, प्रजा बनानी नहीं पड़ती, वो अपने आप ही बन जाती है। इसलिए संसार में भी या किसी ने भी जो कॉन्फ्रेंस में हमारे शिविर चलते हैं यहां, तो यहां भी कई बार जिक्र होता है कि ब्रह्मा कुमारी जो तैयार करते हैं, लीडर तैयार किए जाते हैं। इधर हर एक अपने आप में लीडर है। वैसे भी जब कोई इस ब्राह्मण लाइफ में अवतरित होता है तो क्या होता है, अपनी अपनी विशेषताओं में वो एकदम पारंगत होता है। कितनी प्रकार की सलाह मिलती है उससे, चाहे वो डॉक्टरी के क्षेत्र में ना भी जानता हो, लेकिन अपने नुस्खा तो कोई ना कोई बता ही देगा। तो ये जो पाठशाला है, राजाओं की पाठशाला है, बच्चे स्कूल में जाते हैं तो उनको पढ़ाने के लिए माँ बाप को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी अगर बच्चों में भी अगर कोई कमजोरियां हैं तो माँ बाप कभी उनकी कमजोरियों का वर्णन नहीं करते हैं। कैसा भी बच्चा हो, फिर भी माँ बाप कहते हैं राजा बच्चा है, मेरा सिर का ताज है, नैनों का तारा है, दिल का दुलारा है। तो ऐसे ही बाबा ने हम बच्चों को जो हमारे अंदर योग्यताएं हैं, विशेषताएं हैं, जो प्रतिभाएं हैं, जो दब गई थी, तो उनको तराशने के लिए बाबा ने हमको बड़े सहज तरीके से इस पाठशाला में अनेक प्रकार के ज्ञान के बिंदु हमारे समक्ष प्रस्तुत किए। दुनिया में जो माता पिता बोले पढ़ाते हैं या टीचर जो पढ़ाता है, तो वो स्टूडेंट के अंदर योग्यताओं भरने के लिए उनको खून पसीना एक करना पड़ता है, फिर भी हो सकता है वो बच्चे सक्सेस नहीं होते हैं। लेकिन बाबा हम सबको निश्चिंत रूप से पढ़ाता है, क्योंकि बाबा को पता है एक एक बच्चा राजा बच्चा है जिनके हाथों में विश्व की बागडोर जाने वाली है, जो संसार को संभालने वाले हैं। तो सबसे पहले बाबा हम सबको स्वराज्य का तिलक देता है। आज की मुरली में भी है ना, स्वराज्य अधिकारियों की बाबा सभा देख रहे हैं। स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी है, और उससे पहले स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन की नींव है। तो स्व परिवर्तन करने का जो बाबा हमारे अंदर एक नए विचार पैदा करता है, हमें एक नई ऊर्जा देता है, जिससे हम स्वयं के ऊपर राज्य, स्वयं की कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य करते हैं, तो स्वतः राजा बनते हैं। आज की मुरली में बाबा ने जिक्र किया कि जो बच्चे स्वराज्य अधिकारी हैं वो स्वतः सहज योगी राजयोगी का अनुभव करते हैं, क्योंकि बाबा सबसे पहले हमको तिलक देते हैं, स्मृति का तिलक, मस्तक की मणि। आज की मुरली में तीन बातें हैं, मस्तक, ताज, मस्तक में बाबा चमकती हुई मणि को देखते हैं। तो स्मृति का तिलक देते हैं, सिर के ऊपर ताज रखते हैं, जिम्मेवारी का ताज, पवित्रता का ताज, लाइट का ताज, और नैनों में याद का प्रकाश भरते हैं। तो ये स्मृतियां बाबा हमको इतने सहज तरीके से हमारे अंदर रख देते हैं, जिससे हमारा जो जीवन है एक सामान्य जीवन से ऊंचा चला जाता है, और हमारे संस्कारों में एक राजाई संस्कारों का एक समावेश होता है, राजाई संस्कार उभरने लगते हैं। जो हमारे पुराने संस्कार थे, जिन संस्कारों से आत्मा टेंशन में थी, दुख में थी, चिंता में थी, वो सारे संस्कार जैसे समाप्त होने लगते हैं। तो इस शिक्षा से बाबा हमारे में एक नई ऊर्जा भरता है, हमारी जो ओरिजिनल स्टेज है, जैसे कल का वरदान भी था अपने अनादि स्वरूप में स्थित रहो। तो जितना हम उस स्मृति में स्थित होते जाते हैं, तो हमारे राजाई संस्कार स्वतः कार्य करने लगते हैं। स्मृति का तिलक, आज भी बाबा ने कहा कि स्मृति की जो माया जो हमको विस्मृत कर देती है, तो स्मृति और विस्मृति ये दो चीजों से बाबा हमको अवगत कराते हैं कि तुम बच्चे ही कल्प कल्प के विजयी रत्न हो, सो मान हमारे अंदर इतना जोरदार तरीके से बाबा भर देते हैं कि बाबा ने आज भी कहा स्मृति की माला, सो मैं कौन, इसकी माला फेरते रहो अंदर ही अंदर। तो जितना हम सोमान का अभ्यास करते जाते हैं तो बाबा के जो महावाक्य है उसी तरीके से हमारे कर्मेंद्रियों में वो समाने लगते हैं। तो राजाओं के संस्कार जो कितने ऊंचे होते हैं, राजाएं हमेशा दाता होते हैं, तो हमारे में भी बाबा ने वही संस्कार भर दिए दूसरों को देने के और उससे पहले स्वयं को देने के। जो बाबा ने हम सबको प्रॉपर्टी दिया है, आज एक निशानी भी ये थी कि जो स्वराज्य अधिकारी आत्मा है वो भी खजानों से सर्व प्राप्तियों से सदा संपन्न रहती हैं, अटल अखंड। तो बाबा ने हम सबको इतना बड़ा खजाना दिया है, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी दी है, पहले हमें उस स्वयं में लानी है। इसलिए बाबा कहते हैं मन की डायरी पर नोट करो उसको, दूसरी डायरी में तो रहते हैं लेकिन मन की डायरी के ऊपर जितना हम नोट करते रहते हैं, अर्थात हम उस खजाने को स्वयं को दे रहे हैं। अदरवाइज हम मुरली सुन रहे हैं और वो खजाने हमारे कहीं रह रहे हैं, कमरे के किसी कोने में रखे हैं, तकिया के नीचे रखे हैं, अलमारी में पैक कर दिया है, सेंटर में डायरी रह गई है, तो वो हमारे पास में नहीं आते हैं। इसलिए उन खजानों को हमें स्वयं बार बार दोहराना पड़ेगा, देखना पड़ेगा हमें बाबा ने क्या दिया है। तो वो राजा बनाने के लिए आया हुआ है, उतना ऊंचा ज्ञान दे रहा है, तो हमें अपने अंदर से जो देवत्व छिपा हुआ है, राजाई संस्कार छिपे हुए हैं, उन संस्कारों को उभारने के लिए, उन संस्कारों को तराशने के लिए जो हमको भिन्न भिन्न तरीके से हमें बाबा युक्तियां बताते हैं, तो स्वयं ही अगर उनको हम सामने रखेंगे, उनके प्रति सतर्क रहेंगे, सुजाग रहेंगे, तो ही हम उस की जो इतनी बड़ी बाबा की इतनी बड़ी अपेक्षा हमारे प्रति कि एक एक बच्चा राजा बच्चा बने, तो हम उसको पूर्ण कर सकते हैं। फिर बाबा हमें प्रोत्साहित भी करते हैं क्योंकि ये पथ साधारण पथ नहीं है, अग्नि पथ है, कांटों का पथ है। तो इस पथ पर परिस्थितियां तो आएंगी लेकिन उन परिस्थितियों में भी हलचल ना हो तो बाबा हमेशा हमें प्रोत्साहित करते रहते हैं कि बच्चे इस पथ पर चलते हुए घबराना नहीं है, माया तो आएगी भिन्न भिन्न तरीके से आएगी। कल की मुरली में था ना, माया बहुत अच्छे अच्छे बच्चों को भी कच्चा खा जाती है। तो अगर माया हमको आ रही है तो माना बहुत अच्छे अच्छे बन रहे हैं हम, लेकिन वो हमको कच्चा ना खा जाए ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो माया नेचुरोपैथी कर रही है, एलोपैथी है, सिंपैथी कर रही हो तो पता नहीं है, लेकिन उसका हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमको भी माया की कुछ पैथी करनी पड़ेगी। तो इतने सारे बाबा के जो महावाक्य हैं, फिर बाबा में प्रोत्साहित करते हैं। और राजा जो होते हैं उनका दृष्टिकोण बेहद का होता है, हद में नहीं रहते हैं, सीमित हद में दायरा नहीं रहता उनका, सीमित दायरा नहीं है, बेहद में रहते हैं। तो इसी तरह हमारे बाबा हमारी बुद्धि को इतना विशाल बना देते हैं कि सर्व के प्रति समभाव, विश्व कल्याणकारी की भावना। फिर राजाएं जो होते हैं वो गुप्त वेश में प्रजा का हालचाल देखने जाते हैं, तो बाबा भी हमारा जो गुप्त वेश में हमारी पालना कर रहे हैं, हमें इतना हमारे जो अंदर आत्मा की कमजोरियां उनको समाप्त करने के लिए हमें मालिश पालिश करते हैं, रोज ज्ञान का खजाना देते हैं, जिस ज्ञान खजाने से आत्मा में जो शक्तिशाली आत्मा बन जाती है, आत्मा की सोई शक्तियां जागृत हो जाती हैं। तो गुप्त वे से भी हमारी बाबा पालना कर रहे हैं, तो उसी तरीके से गुप्त तरीके से हमें स्वयं का भी पुरुषार्थ करना पड़ेगा ताकि आत्मा उतने शक्तिशाली हो सके, जो हमारी स्वयं की कमजोरियां हैं, जो हमारे पुरुषार्थ के पांव को पकड़ के बैठी हुई है, आगे नहीं बढ़ने दे रही है, तो उनको भी हमको देखना पड़ेगा कौन कौन सी कमजोरियां जो हमको बांध के रख रही है, हमारी गति को गति में अवरोध पैदा कर रही है, आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। तो कमजोरियों के प्रति हमें सजग होना पड़ेगा ताकि हम बाबा जो हमको किंग मेकर बनाने के लिए, किंग बनाने के लिए आए हैं, तो उस मंजिल परम सहज तरीके से पहुंच सकें। फिर समय की बात है, केवल यही संगम का समय है, तो समय कौन सा चल रहा है, सारे कल्प में केवल एकमात्र समय यह है जिसमें हम राजा बन सकते हैं। इसी समय में जो हम बन गए वही सारे कल्प का आधार बन जाएगा, इसलिए राजा बनना है प्रजा बनना वो सारा हमारे हाथ में है। तो समय की नजाकतों को देखते हुए हमें स्वयं के प्रति उतना निष्ठापूर्वक पूरा मनोयोग से अपने ऊपर रहम करते हुए उस शिक्षा को पूरा अमल में लाना है, तो बाबा के साथ हम उस संबंध का अनुभव कर सकते हैं कि बाबा हमको सचमुच राजा बना रहा है। ठीक है, ओम शांति।
ओम शांति। बाबा से सर्व संबंध में मेरा संबंध है बाबा से कि बाबा मेरा वित्तीय सलाहकार है, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, वित्तीय सलाहकार। तो सबसे पहले दुनिया में जो वित्तीय सलाह देने वाले लोग होते हैं उसको चुनने के लिए उसमें विशेष 5 विशेषता होना चाहिए। और आज की दुनिया में जो वित्त का, जो अर्थ का जो भी बात है, अभी तेजी से बढ़ रहा है। केवल धनाढ्य लोगों को ही नहीं, सामान्य इनकम करने वालों को भी ये अर्थविद अगर मिलता है तो अपनी थोड़ी सी कमाई से भी वो अच्छा उन्नति कर सकता है। तो जब हम ऐसा कोई अर्थविद को अगर हम अपनी लाइफ में लाने चाहेंगे तो सबसे पहले वो अर्थविद का व्यवहार कैसा है, उसके ऊपर हम कितनी भरोसा कर सकते हैं वो देखना होता है। बाबा हमारा ऐसा अर्थविद है जिसके ऊपर कोई शक नहीं है, वो विश्वसनीय है और हमारे से बहुत प्यार से रहते हैं, हमारी दिल की बात समझते हैं। और दूसरा होता है उसमें विशेषता की वो क्षमतावान होना चाहिए, हमें वो सही सलामत राय दे सकता है, उसमें पढ़ाई कितना किया है उसने, कितनी डिग्री है ये दिखा जाता है, हाँ किस यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, उसका कितना पोस्ट है, कितनी क्षमतावान है वो देखना होता है। फिर उसके बाद उसका जो ग्राहक है, उन्हों जो मेरे से पहले जो ग्राहक होंगे उन्हों का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके ऊपर, ग्राहक संतुष्ट है या नहीं है। अगर संतुष्ट नहीं है उससे ग्राहक तो मुझे उसको लेने की कोई फायदा ही नहीं। तो बाबा तो सबको संतुष्ट रखते हैं। और इसके साथ साथ में सेवा उन्मुख भी होना चाहिए, उसको जो नया नया टेक्नोलॉजी आया हुआ है इन सब की भी नॉलेज होना चाहिए, हाँ अपडेटेड रहना चाहिए वो, और साथ में मजबूत रेफरेंस भी देना चाहिए कि आपको ये कार्य ऐसा चल रहा है तो इसको ऐसा करना चाहिए करके वो हमको राय दे सके, तब हम ऐसे आदमी को हम अपना फाइनेंशियल कंसल्टेंट में नियुक्त कर सकते हैं। तो बाबा जो हमारा है, जितने भी अर्थविद है उस अर्थविद का भी अर्थविद बाबा है, उनको तो हम कोई शक नहीं कर सकते, बाबा से हम संपूर्ण संबंध निभा सकते हैं, बाबा को हम निस्वार्थ, बाबा से हम बिल्कुल खुला होकर के उनको हम अपना अर्थविद बना सकते हैं। तो बाबा हमें कैसा राय देते हैं, सबसे पहले बाबा ऐसी राय देते हैं कि बच्चे आप जो धन किसी को दे रहे हो, जैसे दान दे रहे हो, तो दान देते हो तो उस दान का भी आपको रिटर्न मिलता है। अगर अच्छे लोगों को दिया आपने तो आपका जो धन है उससे आपको अच्छा ही होगा, नहीं तो आपको फिर उसका भी, जो बुराई कर्म करेगा तो उसका भी आपको रिटर्न मिलता है करके बाबा समझाते हैं। ऐसा अर्थविद कोई नहीं है जो हमें ये बता सके ये दुनिया में। मुझे एक कहानी याद आ रहा है कि एक राजा था, वो बहुत दयावान था, सबको देता था धन, और उसके द्वार पर एक भिखारी खड़ा हो गया, तो राजा ने उसको 5,000 रुपया दे दिया, ले लो। तो उस भिखारी ने क्या किया, 5,000 रुपया लेके गया और अपना जाल बुना और जो बल्ची जो बनाया मछली को ऊपर लेने के लिए और मछली को पकड़ने के लिए जाल बनाया, सब कुछ किया और अपना धंधा चालू किया 5,000 रुपया से। उसकी धंधा अच्छा हुआ, उसने लाइफ में कई सारी इनकम किया। और राजा एक दिन चले गए, उनका शरीर छूट गया, और ऊपर जब गया तो राजा बहुत धनवान था और धर्मराज की सभा लगी, और राजा चलो इसका खाता पलटाओ क्या क्या किया इसने। और फिर धर्मराज ने बोला कि महाराज इसने तो बहुत सारी मछली मारी है, बहुत सारी मछली मारा है, ये तो हत्यारा है। राजा सोच ही पड़ गया, मैंने तो लाइफ में एक छोटी सी चींटी को भी नहीं मारा है, कैसे मछली मारी मैंने। तो फिर चलो और आगे बढ़ो, इसको पलटाओ खाता, कहाँ क्या किया इसने। जब पलटाते गया तो दिखा गया कि उसने जो 5,000 रुपया एक भिखारी को दिया था और उस भिखारी ने बल्ची बनाया और जाल बनाया और मछली को पकड़ा, पूरी लाइफ वही बिजनेस किया और धन कमाया, और राजा को रिटर्न में क्या मिला, ये जो तुमने दिया था ना, तो तुम्हारी जिद देने की वजह से ही इसने ये काम किया, तो उसकी रिटर्न में तुमको ये सजा होगी। अब तो हम भी जो भी किसी को भी दे रहे हैं दान में, तो हमारे ऊपर भी ऐसा कर्जा न चढ़ जाए। इसलिए बाबा बोलते हैं ना, बच्चे पात्र देख के दान करो। अब इसलिए देने वाले के इंटेंशन अच्छे थे, पर बाबा बोलते हैं ना, बच्चे पात्र देख के दान दो। आप अगर कुछ चीज दे रहे हो तो उस चीज से वो कोई विकर्म की काम में न लगाए, उसके ऊपर चढ़ेंगे जरूर। इसलिए बाबा बोलते हैं पात्र देख के दान करो, क्योंकि उसके ऊपर आपको कर्जा जरूर चढ़ेंगे। इसलिए अगर कोई भिखारी अगर आपके सम्मुख में आता है, तो यह दान देने की बात हो रही, ये कोई हम जो सामान बनाया और बेचा इसकी बात नहीं हो रही। अगर हम दान दे रहे हैं किसी को, तो उसको दान देने से पहले सोच लो। अगर कोई भीख मांग रहा है, तो उसको भीख नहीं बल्कि उसको कोई काम दो, कोई सेवा दो, उस सेवा से जिए, तो फिर जाके क्या होगा, आपको भी अच्छा ही होगा। जैसे हम रास्ते में चलते हैं, कई सारे लोग पैसे मांगते हैं, ट्रेन में भी आते हैं, हम मजबूर हो जाते हैं, लोग बोलते हैं ब्रह्मा कुमारी वाले नहीं देते हैं। इससे अच्छा हम कुछ कर सकते हैं, उनको भी हम अपने पास में कोई टोली हो, कोई मिठाई हो, वो दे सकते हैं। फेंक देता तो ठीक है, कोई बात नहीं, हमने दे तो दिया था, फेंक दिया अच्छी बात है, क्योंकि हम हाँ ये भी हो सकता है। तो बाबा बोलते हैं कि अगर आप दे रहे हो तो उसमें ध्यान रखो, क्योंकि जो हम देते हैं उसका हमको रिटर्न जरूर मिलता है। और बाबा जो बोलते हैं, जो हम दान देने की बात है, इसमें अपने को ध्यान रखना है। और मुरली में बाबा बोलते हैं ना कि बच्चे मैं लूं और मैं तुम्हारी जो धन है वो कोई काम में ना आए, और मुझे भविष्य में फिर आपको कई गुना ऊपर करके देना पड़े, ऐसी धन मुझे नहीं चाहिए। तो बाबा बोलते हैं जिस समय जिस घड़ी मेरे को यज्ञ में लगाना है, उस घड़ी तुमको दान करना है। ऐसा नहीं कि आप जरूरत है उस वक्त आप कुछ नहीं किया, और जरूरत ही नहीं है उसके बाद लाके दे रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं है। जब बाबा से बच्चे बोलते थे ना, बाबा आपको जरूरत पड़ने पर हमें बोलना, हमारे पास बहुत सारी है, तो बाबा क्या जवाब देते थे, बच्चे रखे रहो तुम्हारे पास, मुझे तुम्हारी धन नहीं चाहिए। मेरी इस यज्ञ में मैं उस गरीबों का धन लगाऊंगा, जो पाई पाई जो है उसका धन लगाऊंगा, और उस धन से मैं फिर क्या करूंगा, उस गरीब का भाग्य बनाऊंगा। आज यहाँ एक दोगे, एक पैसे दोगे तो मैं उसको लाखों करके देता हूँ। जैसे सुदामा का सांवल का मुट्ठी का भी गायन है, यहाँ जितने भी हम लोग हैं, हम गरीब गरीबी है एक हिसाब से, दुनिया में कितने धनाढ़ लोग हैं, उन लोग कुछ लगा पा रहे नहीं लगा पा रहे, उन लोगों का सबका मिट्टी में मिलेंगे, पर हम जो दे रहे हैं चावल मुट्ठी ही दे रहे हैं, उसके बदले में हमको महल मिलने वाला है। बाबा ऐसा हमको अर्थ के लिए राय देते हैं। और बाबा कहते हैं, बच्चे पूछते हैं, बाबा पैसे है क्या करें, बाबा क्या बोलते हैं, जाओ मकान बनाओ, आराम से रहो, सेंटर बनाओ, हाँ सेंटर बनाओ, मकान बनाओ, आराम से रहो, धन वैसे भी दासी होना है, कुछ काम में लगा लो, सफल कर बोलते हैं। हाँ बाबा ने ये भी बोला है, बाबा ने ये भी बोला है, अभी बच्चे है, अभी उम्र हुआ है, बच्ची है, बच्चा है, उम्र है, चलो आपने जो भी कार्य करना है कर दो। अच्छा लड़के की शादी नहीं कराना, बच्ची है तो मतलब अपने हिसाब से जो भी लौकिक दुनिया में भी जो भी है वो उसको पूरा करो, हिसाब किताब क्लियर करो, बाबा बोलते हैं। और बाबा बोलते हैं कि जो आपका इनकम का जो सोर्स है ना, मुरली इज सोर्स ऑफ इनकम, जो हमारी जो मुरली है वही हमारा इनकम का स्रोत है। इससे हम इस जन्म में भी कमाई कर सकते हैं, तो अगले जन्म में भी कमाई कर सकते हैं। और मुझे जब मैं मुरली को बहुत पढ़ता था, और मैं मुरली से जब कुछ रिकॉर्डिंग करता था, लोगों को भेजता था, तो मेरे साथ में कई सारे लोग भी जुड़े थे एक हिसाब से। और दूसरी चीज, मुरली से मेरे को बहुत सी फायदा हुए है, जो बताने से भी बताया नहीं जा सकता है, उतनी ज़्यादा मेरे को फायदा हुआ है इसी जन्म में भी। अगर हम मुरली में ध्यान रखेंगे, मुरली पढ़ेंगे, तो इसी जन्म में भी बहुत सारी कमाई होगा, तो अगले जन्म में भी कमाई होगा। हाँ अभी नहीं करता, जब मैं करता था रिकॉर्डिंग तब कोई नहीं करते थे, अभी तो बहुत सारे लोग करते हैं, अब कोई जरूरत नहीं है, अभी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इतने सारे लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, मेरा कोई जरूरत नहीं, जब मैं करता था तब कोई नहीं करते थे, तब कोई नहीं करते थे, तब की बात है। मतलब मुरली हम पढ़ेंगे तो बहुत इनकम है, और दूसरों को सुनाएंगे तो भी इनकम है, इसमें बहुत फायदा ही फायदा है। तो पढ़ाई जो है मुरली, ये सोर्स ऑफ इनकम है। और जो दान की ही बात है, जब मैं लोगों के घर में गया था इस बारी, तो मेरा बड़ा भाई बोल रहे थे कि ये देना पड़ता है ना दान, ये सब सस्ता ऐसा होता है। मैंने बोला कि अगर आप अभी नहीं दोगे ना तो आपको बाद में भी नहीं मिलेगा, नहीं दिया तो नहीं मिलेगा। तो मेरी माँ सम्मुख में बैठी थी, तो उन्होंने बोला ऐसी बात है, तो मुझे निकाल के कुछ पैसे दिए। अच्छा ठीक है, मैं इसको बाबा की भंडारी में रख दूंगा, और देखो बाबा आपको गरम गरम अभी दे रहा है। फिर मैंने अपनी तरफ से उनको जो देना था दे दिया, तो वो खुश हो गई। मतलब मतलब हम देंगे तो फिर मिलेगा, अगर नहीं देंगे तो नहीं मिलेगा। ये कर्म की गुहिया गति है, तो कर्म की ये गुहिया गति है। तो इस तरह से बाबा हमको समझाते हैं। और अपनी जो धन है, विशेष तो बाबा ने दान के ऊपर अटेंशन दिया है कि अपने को पात्र देख के दान करना है। हम बाबा की भंडारी में जितने लगाएंगे और जितना अच्छे पर्सन को हम देंगे तो उसका रिटर्न हमें अच्छा ही मिलेगा, क्योंकि भक्ति में भी बाबा ने समझाया है, भक्ति मार्ग में भी हम दान पुण्य करते हैं तो दान करते हैं, जितना ज़्यादा दान करता है वो एक जन्म के लिए राजा बन जाता है। तो हम यहाँ पर ज्ञान दान करेंगे, अपनी धन दान करेंगे, और साथ साथ में शुभ भावना शुभकामना का दान करेंगे, सकाश देंगे। तो ये सब दान जो है, ये हमारा जो अर्थ अगले जन्म में सती की दुनिया में अर्थ बढ़ता जाएगा, धन अर्जित होता जाएगा, और हम अपनी लाइफ को एक राजा तुल्य, कई जन्म तक राजा बन के हम अपनी लाइफ को बिता सकते। इस तरह का बाबा हमें अर्थविद बन करके हमें सजेशन देते हैं। इस अर्थविद को हम अपनी लाइफ में अगर रखेंगे तो हमें वो सब कुछ बताते जाएंगे। दुनिया में जो काला धन बढ़ रहा है उसकी बारे में भी बाबा बताते, हमको काला धन जमा करना नहीं है। बाबा बोलते हैं ना कि बाबा ये ऑफिस में काम करना पड़ता है, हमारे पीछे से यहाँ डालते क्या करें। बाबा ने बोला है मत, कोई बात नहीं है, सेवा में लगा सकते तो ठीक है, पर बाकी आप हाथ खुला करके मत लो सेवा में लगा दो, उसको जो मिली तो सेवा में लगा दो, अपने स्वार्थ में उसको यूज नहीं करो, क्योंकि आपके ऊपर वो बोझ चढ़ेगा। और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, लोगों में जो काला धन बढ़ता जा रहा है, तो उन लोग कोई किसी तरीके से क्या करते हैं, कोई सस्ता में ले जा करके उसको ठिकाने में रखते हैं, लगा देते हैं। तो उससे क्या होता है, आज जो यज्ञ में जो बढ़ती जा रही है इनकम, पर उस इनकम और पहले की इनकम में कितनी रात दिन की अंतर है। क्योंकि आज दुनिया में लोग अपने को बचाव के लिए भी ला करके हमें कुछ दे देते हैं, उससे हमारे को क्या होता है, उन लोगों का भी थोड़ा सा बोझ जो है हमारी तरफ आता है। तो ये कर्म की गुहिया गति है, जो हमें उससे तकलीफ जरूर होगा, जो हम ले रहे हैं, जो हम खा रहे हैं दूसरों की, उससे तकलीफ जरूर होगा। इसलिए हम किसी से मिल रहा है तो उसके लिए बहुत योग तपस्या करके उसको अगर हम सकाश नहीं दे सकेंगे तो वो हमारे पुरुषार्थ के लिए ही हमें मुश्किल करेगा। इसलिए हमको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि आज हम कुछ बना रहे और फिर जाकर उसे तोड़ना पड़ रहा है। हम कुछ चीज ले रहे हैं वो हमें साथ नहीं दे रहा है, गाड़ी ले रहे हैं वो हमें वो गाड़ी से तकलीफ हो रहा है, या कोई चीज ले रहे हैं उससे हमको नुकसान ही हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि आज जो धन आ रहा है वो शुद्ध नहीं है। तो ये अशुद्ध धन को फिर हमको शुद्ध बनाने के लिए बहुत मेहनत तपस्या करना पड़ता है। तो वो बाबा जब शुरू शुरू में बोलते थे ना कि बच्चे पतितों का हाथ का लेना ही नहीं, देना भी नहीं लेना भी नहीं, आज तो ऐसा नहीं हो रहा है। तो फिर हमको इस चीज में भी ध्यान रखना है। तो बाबा हमारा वित्तीय अर्थविद बनकर हमें ये सभी सजेशन देते हैं, तो हम उनको साथ रखेंगे तो हमारा धन सफल भी होगा और हमारा धन काला नहीं होगा, हमेशा सफेद होगा, और सफेद धन सती की दुनिया में भी जाकर के हमको अच्छे अच्छे महल देगा, अच्छे अच्छे वाहन देगा, पुष्प विमान देगा, और हमारा लाइफ सुंदर होगा। ओम शांति।